आवश्यक है। स्वस्थ जीवन जीना कौन नहीं चाहता है, तो स्वास्थ्य के माध्यम से लोगों को बुलाना बहुत सहज है। और साथ साथ फिर हम जब बीमार होते हैं किसको पुकारते हैं, भगवान को ही पुकारते हैं। तो ऐसे लोग फिर उनको आध्यात्मिकता की तौर और फिर उनको डाइवर्ट करना बहुत सहज है। तो इसलिए पिछले एक साल से जो मैं सेवा किया हूं, लगभग 100 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा कुछ झलक दिखाऊंगा फोटो। ये जलगांव में पिछले मई महीना में पिछले साल शुरू किया था। हजारों पब्लिक ये सब बाबा के संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, म्यूजिकल एक्सरसाइज। एकदम अर्ली मॉर्निंग सवेरे एकदम 4-4:30 बजे लोग मैदान में आ जाते थे, जबकि सवेरा भी नहीं हुआ है, और एक्सरसाइज करने के लिए देखिए कैसे उत्सुक है। हजारों संख्या में जहां भी जाओ, बड़े बड़े हॉल में लोग सब बीमार हैं, सब चाहते हैं कैसे ठीक हों, इसलिए जहां भी बुलाओ बहुत सहज रूप से आ जाते हैं। ये दिल्ली में शुरू किया था, वो अर्ष दिल्ली में, आप देखिए दिल्ली में, यहां भी लगभग 600-700 सभी भाई बहने आए थे। ये देखिए एक्सरसाइज कर रहे हैं सवेरे सवेरे। ये पदमपुर में गया था जून महीना में, ये तिनसुकिया गया था आसाम, यहां भी हजारों लोग करीब थे जुलाई महीना में। ये ग्वालियर अगस्त में गया था, यहां कैंसर हॉस्पिटल है, वहां भी लगभग 400-500 लोग आए थे। ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम है, जहां 1,500 पब्लिक आए थे। और ये गुलबर्गा गया था, वहां भी सितंबर में, वहां भी पूरा हॉल, जगह नहीं कहीं भी। ये बुरहानपुर गया था, यहां तो अब सोच नहीं सकते इतने लोग आए थे। ये सब बहने और भाई, कोई उठ के 8-8 घंटा प्रोग्राम होता है, कोई उठ के नहीं जाता है। 4 घंटा लंच से पहले, 4 घंटा लंच के बाद, कोई उठ के नहीं जाता है। देखिए ये पाचोरा में एकदम महाराष्ट्र में अर्ली मॉर्निंग एकदम एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। देखिए अंधेरे में एकदम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ये पानीपत गया था, पानीपत में भी थे। ये भुवनेश्वर गया था उड़ीसा, कोलकाता गया था ये जनवरी में, ठंडी का मौसम है देखिए इसलिए। ये फरवरी में मालेगांव में 3,000 पब्लिक आए थे, 3 दिन के लिए 8-8 घंटा प्रोग्राम चला। वहां 300 बाबा के बच्चे रेगुलर क्लास में चल रहे हैं, 300 से भी ज्यादा। ये मालेगांव में हुआ था। देखिए ये डायमंड जुबली हॉल जैसा बड़ा एक प्रोजेक्ट, ये LED स्क्रीन लगा हुआ है, लोग एकदम दूर दूर तक बैठे हैं। ये सुधा दीदी और मंगला बहन ये ऑर्गेनाइज किए थे उधर। ये देखिए बड़ा स्क्रीन में लोग सब बैठ के देख रहे हैं। ये अमलनेर महाराष्ट्र, यहां भी 1,000 लोग करीब आए थे। ये जालना गया था, जालना में एक जैन लोगों का बहुत सुंदर एक ऑडिटोरियम है, ऐसा डोम जैसा, हमारे डायमंड जुबली हॉल जैसा है, वहां भी लगभग 1,500-2,000 लोग आए थे। सवेरे सवेरे एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए ये खार बॉम्बे में VVIP लोग सब आए थे, ये करीब नियरली 700 सब बिल्डर्स ज्वेलर्स ऐसे लोग सब आए थे वहां। ये देखिए सभी, ये मंडी दावली है हिमाचल प्रदेश, ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मेरठ में प्रोग्राम हुआ था अप्रैल में, और ये ORC में अप्रैल में प्रोग्राम हुआ था फिर से, ORC में ओम शांति रिट्रीट सेंटर हमारे। ये पूना में प्रोग्राम हुआ था अभी मई महीना में, यहां भी एकदम टफ क्रीम पॉपुलेशन आए थे, VIP लोग सभी करीब 650 लोग आए थे। यहां भी 200-300 लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं अभी। ये अलविदा डायबिटीज प्रोग्राम देखिए सूरत में हुआ था मई महीना में, यहां कितने पब्लिक आए थे देखिए, 3,000 से भी ज्यादा। ये माताएं ये भाई सब बैठे हैं। यहां भी रेगुलर अभी 200-250 स्टूडेंट बन गए, बाबा के बच्चे सब बस रिजर्व करके आए थे यहां ज्ञान सरोवर देखने के लिए, हमारा कॉम्प्लेक्स देखने के लिए, और हॉस्पिटल में आके सब मिले मुझे। 150-200 लोग वहां से रिजर्व करके आए थे, तो सब बाबा के नए बच्चे बने। तो ये दिग्बोई गया था आसाम, आसाम में यहां मई महीना में, यहां भी काफी लोग आए थे। वहां भी बाबा का सेंटर है, सेवा नहीं हो रही थी, लेकिन हेल्थ के बहाने में सब लोग आ जाते हैं। ये रोइंग गया था अरुणाचल प्रदेश अभी जून महीना में, यहां भी हॉल जगह नहीं बिल्कुल। ये भी तेजू गया था, यहां भी अरुणाचल प्रदेश में। ये मंडी गोविंदगढ़ गया था इधर जून महीना में अभी, और ये अभी लुधियाना होके आया, यहां भी 1,000 लोग आए थे। वहां दीदी मुझे बता रही थी कि हमारे यहां कोई 1 घंटा से ज्यादा बैठेगा ही नहीं। मैं बोला कि दीदी आप चिंता नहीं करो, आप रखो प्रोग्राम, देखो क्या होता है। लोग शाम को भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं, मैं कहता जाओ भाई, जाने के लिए तैयार नहीं, आठ घंटे के बाद भी। थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा समाचार आप तो सुनाया तो अभी फिर से आप सभी को शुभ संध्या कहते हुए स्टार्ट करता हूं। हट्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिल से स्वागत है सभी का। आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं, एक प्रेजेंटेशन। व्हाट इज दैट? स्पिरिचुअल हेल्थ एंड योगिक लाइफस्टाइल। स्पिरिचुअल हेल्थ एंड योगिक लाइफस्टाइल। दुनिया में फिजिकल हेल्थ क्या है तो जानते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है लोग जानते हैं, सोशल व सामाजिक स्वास्थ्य भी लोग जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है किसी को भी पता नहीं। तो जो आध्यात्मिक स्वस्थ जीवन जीता है वास्तव में वही संपूर्ण स्वास्थ्यवान बन सकता है। तो योगी जीवन शैली क्या है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, ये एक सुंदर सौगात आप सभी के लिए लेके आया हूं। देखिए, हम सभी भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? अज्ञान काल में भी हम भगवान को प्रार्थना करते थे, कोई क्या मांगता था, कोई क्या मांगता था, लेकिन सभी हम कैसे एक सुंदर शरीर हो, कोई भी रोग ना हो, व्याधि ना हो, पीड़ा ना हो, भगवान को प्रार्थना करते थे ना। तो देखिए भगवान हमें क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, एवर हेल्दी लाइफ इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। संपूर्ण स्वस्थ जीवन, निरोगी जीवन तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम एक जन्म नहीं, 21 जन्म निरोगी रह सकते हो, लेकिन इसलिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एडप्ट स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉर एवर हेल्दी लाइफ। गर्मी लग रही थोड़ा बड़ा। अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाओ। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने से ही सदा के लिए निरोगी बन सकते हो। देखिए, हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि भी होके गए हैं जिन्होंने स्वास्थ्य का महसूस किए थे, और वो भी स्वस्थ रहने के लिए हमें जो आसन, प्राणायाम आदि, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पोस्टुरल एक्सरसाइज सिखा के गए थे, आज तक देखिए लोग प्राय विस्मृत हो गया था। जैसे हमारे धर्म प्राय लोप होता है तब भगवान आके इसकी पुनर्स्थापना करते हैं। इसी प्रकार जो ऋषि मुनि प्राय जो आसन प्राणायाम आदि सिखा के गए थे, लोग प्राय भूल गए थे, अभी हमारे रामदेव बाबा फिर से उसको पुनर्स्थापना करके सभी के अंदर जागृति ला दिए। तो देखिए, ऋषि मुनियों को भी पता था कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम भगवान को याद नहीं कर सकेंगे। किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर दर्द है, तो वो मन तो वहां ही टिका रहेगा, भगवान की तरफ कहां जाएगा। इसलिए उनको भी पता था कि एक स्वस्थ जीवन जीना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने भी सिखाया था। ये कौन है? ये महाभारत जो सीरियल देखे हैं सब जानते हैं, ये है कर्ण। ये कर्ण बहुत एक बड़ा योद्धा था, महावीर, वो सारे पांडवों, अर्जुन से भी बहुत पराक्रमी था, योद्धा था। ये कई बार इसके रथ को जब अर्जुन तीर मार के पीछे खिसका देता था, कई बार खिसका दिया, लेकिन इन्होंने एक बार तीर मारा तो नंदीघोष रथ, जहां स्वयं भगवान विराजित है, अर्जुन विराजित है, वो रथ भी कितने कदम पीछे हट गया। तो भगवान इसकी बहुत महिमा किए, कहते हैं अर्जुन ये बहुत बड़ा महायोद्धा है, महावीर है। तो अर्जुन को सहा नहीं गया। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं इसका रथ को इतने बार पीछे हटा दिया, आपने मुझे एक बार भी प्रशंसा नहीं किया मेरा, और ये मेरा रथ को कुछ कदम एक बार ही खिसकाया और आप इतना महिमा कर रहे हो इसको। तो भगवान ने क्या कहा, अरे उसका रथ तो एक साधारण रथ है, लेकिन तेरा रथ में मैं स्वयं विराजित हूं, 33 करोड़ देवता विराजित है, स्वयं मारुति हनुमान ध्वजा पकड़ के ऊपर खड़ा है, ऐसा एक पावरफुल रथ को भी अगर वो खिसका देता है तो वो महायोद्धा है कि तू महायोद्धा है। लेकिन ये हार गया था। क्यों हारा जानते हैं? क्यों हारा? इसका रथ जमीन में धस गया था, उसका पहिया। तो उसी वक्त वो कहा कि अर्जुन मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं मेरा रथ को निकालता हूं, फिर लड़ेंगे, तुझे रणनीति सुनाता हूं। सुन, जो योद्धा होता है वो कभी भी, जो महावीर होता है, जो योद्धा होता है वो युद्ध का नियम कभी नहीं तोड़ता है। अगर कोई शत्रु ऐसे विपत्ति में है, उसका रथ में ऐसा प्रॉब्लम है, तो उस समय उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मैं देखो मैं फिर लड़ूंगा, मेरा रथ निकालता हूं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, ये तो कहानी है सारी, भगवान ने कहा ये तुझे आज रणनीति सिखा रहा है, जब तेरा अभिमन्यु को सप्त महारथी घेर के एक ही साथ उसको हत्या किए, उस समय रणनीति भूल गया था, कौन सा युद्ध के नियम में लिखा है कि सात लोग एक ही व्यक्ति हुए ओवर अटैक करेंगे, तो भगवान ने कहा इसको मार उस समय, तो उस समय अर्जुन ही इसको मार दिए थे और अर्जुन विजयी बने थे। कहने का मतलब है, देखिए जीवन एक संग्राम है दोस्तों, जीवन एक संग्राम है, ये जीवन में हर कदम हम सभी युद्धरत है, अगर अच्छा शरीर रूपी रथ नहीं होगा तो हम इस जीवन संग्राम में हार खा जाएंगे कर्ण जैसा। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे तुम आत्मा कितने भी शक्तिशाली हो, तुम्हारा शरीर रूपी रथ ठीक नहीं है तो तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, इसलिए शरीर को भी ध्यान देना जरूरी है, हेल्दी रहना भी जरूरी है, जो हेल्दी होता है वो तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। हमारे ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा के बारे में जैसे आप महाभारत पढ़िए, महाभारत में अर्जुन को भगवान कहते हैं हे महाबाहो, महाबाहो शब्द का अर्थ क्या है, जिसका हाथ एकदम घुटना से भी नीचे तक पहुंचता है, आप कभी खड़ा होकर देखिए आपका हाथ कहाँ है घुटना कहाँ है आप खुद समझ आएंगे, लेकिन जिसके हाथ लंबे लंबे होते हैं उसको महाबाहो कहा जाता है। हमारे ब्रह्मा बाबा का हाथ घुटना से नीचे था, घुटना तक जाता था, कहने का मतलब ब्रह्मा बाबा देखो ना मोटू थे ना पतले दुबले थे, एकदम 93 उम्र तक चश्मा नहीं पहने, कोई डंडा नहीं पकड़े, पहाड़ी चढ़ने में एकदम आगे, सब प्रकार का काम खुद करके कैसे महावीर रूप में दिखाए। तो कहने का मतलब है अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो हम पुरुषार्थ में भी आगे नहीं जा सकते हैं, सेवा में भी आगे नहीं जा सकते हैं, फिर तो मैक्सिमम समय ये शरीर को संभालने के लिए ही जाएगा। तो जीवन में तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या क्या, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीन चीजें सभी चाहते हैं जीवन में, परंतु ये तीनों चीजों में से सबसे मुख्य क्या है, हेल्थ है, क्योंकि अगर कोई हेल्दी होगा तो ही वो धन कमा सकेगा, कोई हेल्दी होगा तो ही वो खुश रह सकेगा, नहीं तो कैसे खुश रहेगा, तो इसलिए हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। संपूर्ण स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, कोई व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्यवान तब कहेंगे जब वो फिजिकली मेंटली सोशियली एंड स्पिरिचुअली चारों बातों में अगर वो स्वस्थ है तब हम कहेंगे वो पूरा संपूर्ण स्वास्थ्यवान है। तो फिजिकली हेल्दी किसे कहा जाता है, कोई व्यक्ति को अगर उसका ब्लड प्रेशर अगर देखते हैं नॉर्मल है, उसको बुखार नहीं है, उसका शारीरिक वजन एकदम आइडियल है, और वो जो भी खाता है ठीक से हजम कर पाता है, भाग दौड़ करके सब काम करता है, उसको नींद ठीक आती है, तब हम कहेंगे ये फिजिकली हेल्दी है। खाली बाहर से देखने से कोई स्वस्थ है ये धोखा है, बाहर से देखने में बहुत हट्टा कट्टा पूरा गोल मोटल दिखता रहेगा कोई, लेकिन उसको अगर हाई ब्लड प्रेशर है डायबिटीज है फिर कैसे स्वस्थ है। तो ये सब चेकिंग करके अगर हम सब ठीक है तो फिजिकली हेल्दी कहेंगे। इस प्रकार मेंटली हेल्दी कौन है, मानसिक रूप में हेल्दी उसे कहा जाता है जो अपना परिवार का उत्तरदायित्व संभालता है, समाज का भी उत्तरदायित्व संभालता है, और साथ साथ सारे दिन में उसका मूड स्विंग्स नहीं होता है, अर्थात अभी अभी देखो तो एकदम खुश, अभी अभी देखो तो गुस्सा कर रहे हैं कि एकदम बिल्कुल रावण, ऐसा नहीं, कभी डिप्रेशन तो कभी इलेशन नहीं, बिल्कुल एकदम मानसिक संतुलन रहे, सबके साथ प्रेम प्यार से व्यवहार करें, इमोशनल बैलेंस रहे, स्टेबिलिटी रहे, तब कहेंगे मेंटली हेल्दी। इस प्रकार सोशली हेल्दी कौन है, सोशली हेल्दी वो है जिसका वास्तव में समाज में रहते हुए सबके साथ मिलजुल के रहे, सबको हाथ बटाए, सबको सहयोग दे, सबसे सहयोग ले, बच्चे बूढ़े सबको सहयोग दे, और साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखे। हम जहां रहते आजकल दुनिया में घर तो सफाई कर देते हैं लेकिन सारे खिचड़ा कहाँ, रास्ते में, सारे पेड़ पौधे काट के बिल्कुल पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन सामाजिक रीति से स्वास्थ्यवान वो है जो पर्यावरण का भी ध्यान दे। और साथ साथ स्पिरिचुअली हेल्दी कौन है ये दुनिया में कोई नहीं जानते, स्पिरिचुअली हेल्दी वो है जो अपने को आत्मा समझता है, सबको आत्मिक रूप में देखता है, हम है पंछी एक डाल के, सब रंग बिरंगी पंछियां हैं। आइए बहन जी बुला रहे हैं, तो हम सभी रंग बिरंगी पंछियों की तरह है, लेकिन सभी आत्मा है और ये संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो जो सदा स्वयं को आत्मा समझते हुए सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है, सदा विश्व कल्याण का सोचता है और पिता परमात्मा की स्मृति में रहता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ है। और जो आध्यात्मिक रीति से स्वस्थ होगा वही व्यक्ति ही शारीरिक मानसिक सामाजिक रीति से स्वस्थ हो सकता है। अगर सदा भगवान के गीत गुनगुनाता रहे, महिमा गुनगुनाता रहे, मन शांत रहेगा, जिस माहौल में रहेगा सबको प्यार प्रेम से देखेगा, आत्मिक रूप में देखेगा तो सामाजिक रीति से स्वस्थ रहेगा। और जिसका मन ठीक है उसका तन तो ठीक होना ही है, तो इसलिए आध्यात्मिक स्वास्थ्यवान व्यक्ति ही संपूर्ण स्वास्थ्यवान बन सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है स्वास्थ्य किसे कहा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य का बहुत लोगों में बड़ा बहुत गलत फहमी है। कोई एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा है तो कहेंगे वाह बढ़िया हेल्दी है, मेरे पास तो आपको आश्चर्य लगेगा इतने मोटे मोटे लोग आते हैं। मैं पूछता हूँ भाई अपना ध्यान तो रखो, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अभी तो ठीक हूँ, फिर भी पहले तो और हेल्दी था। अर्थात जितना मोटा उतना हेल्दी है क्या? तो कहने का मतलब है हेल्थ किसे कहा जाता है लोगों को पता नहीं। वास्तव में हेल्थ किसे कहा जाता है, हेल्थ तो अंग्रेजी टर्म है लेकिन हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वास्थ्य। वास्तव में स्वस्थ स्वस्थिति में जो स्थित रहता है वही स्वास्थ्यवान है। स्वस्थिति जिसको बाबा कहते हैं आत्मा का जो निजी गुण है, आत्मा के कितने प्रकार के गुण है, कितने प्रकार के गुण है, दो प्रकार के गुण है, प्रकार बताया, दो प्रकार के गुण है, कौन से, आदि गुण और अनादि गुण। अनादि गुण सात होते हैं और आदि गुण कितने, आदि गुण कितने, अनादि गुण माना आत्मा के जो निजी गुण है वो सात है, आपको बताते हैं ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति। लेकिन जब आत्मा पहली बार संसार में आके अभिनय करती है, पाठ बजाती है देवता रूप में, उस समय जो दैवी गुण होते हैं उसको कहते हैं आदि गुण। वो कौन क्या क्या है, क्या क्या है, वो हिस्ट्री हल्के उधर लिखा हुआ है, कभी देखे हैं, पढ़े हैं सभी, वो सभी याद है 36 गुण कम से कम। हमारी दादी जानकी जी बता रही थी एक बार हम विचार सागर मंथन करके हम निकाले 56 गुण, 56 गुण भी है, एक पहले एक डायरी मिलती थी उसे 56 गुण लिखा हुआ है, तो कम से कम 36 गुण कहते हैं। वो 36 गुण याद है, जिसको याद है हाथ उठाओ, 36 गुण जो बता सकते हैं हाथ उठाओ, कोई नहीं। मैं बहुत साल पहले जब मधुबन आया था मेरे मन में विचार चला कि 36 गुण क्या क्या है हमें अगर पता ही नहीं है तो बनेंगे कब। लेकिन कहने का मतलब है भले याद नहीं रहे, अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि डेली एक एक गुण भी अगर जीवन में धारण करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज वो समय नहीं है, अभी लास्ट सो फास्ट बनने का समय है, तो बाबा हमें शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, बच्चे एक गुण सिर्फ धारण करो तो सर्व गुण तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। कौन सा गुण है, कौन सा गुण बताइए, बताइए बताइए बताइए। बाबा ने कहा संतुष्टता। अगर संतुष्टता अगर एक गुण जीवन में धारण करें तो सारे गुण आ जाएंगे, सारे गुण आ जाएंगे। इसलिए सब कुछ गुण अगर याद आता है तो बहुत अच्छा, नहीं याद आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम संतुष्ट रहना सीखें, संतुष्ट रहना सीखें तो ऑटोमेटिकली जीवन में बाकी सब गुण धीरे 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 आ ही जाएंगे। अभी बहुत शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन जगदीश भाई कहा करते थे कि बाबा हमको एक एक गुण एक एक हफ्ता तक प्रैक्टिस करने के लिए बताते थे, जाओ बच्चे ये गुण अभ्यास करो 7 दिन तक। तो दादियां सभी ऐसे अभ्यास किए हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, अभी भी फिर कर सकता है कोई भी तो बहुत अच्छी बात है। और ये 7 गुण जो अनादि गुण है, इस गुण में स्थित रहना ही वास्तव में स्वस्थिति में स्थित रहना, तो ही हम स्वास्थ्यवान बन सकते हैं। तो ये 7 गुण को 7 रंग के रूप में, जैसे हीरा डायमंड में जैसे व्हाइट लाइट अगर पास करते तो 7 रंग दिखते हैं, इंद्रधनुष जैसे 7 रंग है, ये सब 7 गुणों को 7 रंग के रूप में दिखाया गया है। और ये गुणों को वास्तव में धारण करेंगे तो ही हम संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। और जो जीवन में ये 7 गुणों को धारण करता है उसकी आत्मा सतो प्रधान बनती है, सतोगुणी बन जाती है। 7 गुणों में जब 100% हम बन जाते हैं तब कहेंगे सतोगुणी अवस्था आत्मा की। और जब आत्मा सतोगुणी हो जाती है तो यह शरीर भी ऐसे ही सतोगुणी हो जाती है। इसलिए देखिए लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि आदि जो हमारे पूर्वज थे उनके आत्मा सतोगुणी होने के कारण शरीर भी निरोगी कंचन का या कोई भी बीमारी नहीं। इसलिए किसने कहा है द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ह्यूमन सोल। जैसी आत्मा होगी ऐसा शरीर होगा ऑटोमेटिकली। जैसे एक डायमंड का आप अगर जेवर खरीदेंगे तो उसका जो बॉक्स मिलेगा वो भी सोने का कि चांदी का बॉक्स होगा डेफिनेटली। बहुत एकदम 2-4 लाख रुपया का अगर कोई खरीदता है जेवर तो बॉक्स डेफिनेटली सोने का कि चांदी का होगा। तो इसी प्रकार आत्मा जितना मूल्यवान है शरीर भी ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो जाता है। और जब हम आत्मा सतोगुणी हो जाती है सातों गुणों में हम संपन्न हो जाते हैं तो हमारे शरीर के एक एक सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। आप इसमें देख सकते हो जब हम ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं नॉलेजफुल हो जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाते हैं एक्यूरेट काम करते हैं। आज 98 उम्र में हमारी दादी जानकी जी 98 उम्र की है अभी भी ईमेल खोलती है जवाब देती है अभी भी 50 साल की पुरानी बात ऐसे बताती है जैसे कल की बात है। तो इतनी स्मृति शक्ति 98 उम्र में लोग तो खटिया पकड़ के कैसे हालत होती है बूढ़े बुढ़ियों को देखे हो लेकिन कैसे हैं क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन चलता है जिसके कारण आज भी देखिए कितना एक्टिव है। इस प्रकार जो पवित्रता को धारण करता है उसके 5 कर्मेंद्रियां शीतल हो जाते हैं अपने बस में रहते हैं और जो पीस को शांति को धारण करता है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सुंदर हो जाता है और जो जिसके जीवन में प्रेम है प्यार है उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसके हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत सुंदर हो जाते हैं। जो सदा खुश रहता है जॉयफुल रहता है कभी भी उसको पेप्टिक अल्सर आदि होगी नहीं इंडाइजेशन कभी नहीं होगा एसिडिटी कभी नहीं होगी। और जो सदा आनंदमय स्थिति में रहता है उसकी बॉडी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है उसको कोई प्रकार का इन्फेक्शन आदि नहीं हो सकता है सारे एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जो पावरफुल स्थिति में रहता है उसके मसल्स बोन्स आदि भी पावरफुल हो जाते हैं। कहने का मतलब है आत्मा के जो अनादि 7 गुण है ये 7 गुण के आधार से हम शरीर भी प्रभावित होके हम संपूर्ण शारीरिक रीति से भी स्वस्थ हो सकते हैं। आज दुनिया में 36.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो गया है हर साल 1 करोड़ उसमें शामिल होते जा रहे हैं। 2011 में हमारे भारतवर्ष में 10 लाख लोगों का मौत हो गया डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन से 10 लाख लोग आप सोच लीजिए एक बड़ा शहर खत्म। इस प्रकार ये भी सर्वे किया गया देखा गया कि हमारे भारतवर्ष में शहरी इलाका में 50% महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर है। तो डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर हार्ट की बीमारी स्ट्रोक ये सब एक के बाद एक जो कॉम्प्लिकेशन होता जा रहा है इसका मूल कारण क्या है क्यों हो रहा है ऐसा क्यों लोग बीमार होते जा रहे हैं ऐसी इतनी बीमारी पहले नहीं थी अभी क्यों बढ़ती जा रही है इसका मूल कारण है हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली में बदलाव। आज लोग कैसे खा रहे हैं क्या खा रहे हैं देखिए अभी भी लुधियाना से एक पेशेंट में एडमिट किया हूं एक मैडम है वो कहती है मैं जब तक टीवी नहीं देखती हूं मेरा खाना नीचे जाता है नहीं नीचे उतरता ही नहीं टीवी नहीं देखूं तो खाना खा ही नहीं सकती हूं मैं। तो इडियट बॉक्स देख के खाएंगे तो कितना खा गए पता ही नहीं तो क्या हाल होगा क्या हाल होगा आप सोचिए। तो इसलिए देखिए स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल द नीड ऑफ द आवर वर्तमान आध्यात्मिक जीवन शैली ही वर्तमान समय की मांग है। हमारी भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता प्राय विस्मृत हो चुके हैं हम सभी। मुझे याद है बचपन में मेरे ग्रैंडफादर जब हम खाने बैठते थे सब परिवार के सभी मिलके कोई भी बात कर नहीं सकता बिल्कुल एकदम चुप और पहले भगवान को याद करेंगे पानी ऐसे लेंगे हाथ में फिर ऐसे करके मुंह में एक बार लेंगे फिर जाके शुरू करो कहेंगे कितने साइंटिफिक है। देखिए खाना खाने से पहले एक घूंट पानी पी लीजिए गला सरल हो जाएगा कोई भी खाएंगे तो अटकेगा नहीं नहीं तो कभी कभी अटक जाता है खांसी आती है कितना चेस्ट पेन होता है तो कितना साइंटिफिक है। लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति को हम भूल चुके हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे भोजन जो बनाते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है लेकिन ब्रह्मा भोजन तो बहुत सुंदर बाबा के घर में बनता है बाबा को अर्पण भी करते हैं लेकिन उसको अगर हम परचिंतन करते हुए दुनिया के फालतू बातें बातचीत करते गपशप करते हुए ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं तो वो जितनी शक्ति मिलनी चाहिए नहीं मिल सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं गिट्टी गिट्टी सिमरन करके भी याद करके भी खाओ। कभी कभी जो फौजी में है वो कहते हैं बाबा को बाबा क्या करें वहां खाना तो नहीं बना सकते हैं बाबा कहते हैं कोई बात नहीं तुम सारे विश्व को पावन बना सकते हो, अपना भोजन को पावन नहीं बना सकते हो, बाबा को याद करके खाओ। तो बाबा को अगर जो याद करके नहीं खाते हैं, एक साकार मुल्लिन तो बाबा ने कहा है, जो बाबा को याद करके नहीं खाते वो चोर है। तो इसलिए बाबा को याद करके गिट्टी गिट्टी एकदम साइलेंस में खाना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली है, लेकिन वो दुनिया में लोग भूलने के कारण आज ये दुरावस्था है। तो परंतु एक होता है स्पिरिचुअलिटी, दूसरा होता है रिलीजियोसिटी। दोनों में क्या अंतर है? रिलीजियन अर्थात धर्म, जिसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं, लोग भोगे कपड़े पहनेंगे, जटाजूट रखेंगे, चिता चैतन्य लगाएंगे, रुद्राक्ष माला पहनेंगे, ये सब रिलीजियोसिटी है। मंदिर डेली जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो कई बाबा के बच्चे भी हमारी जो आध्यात्मिक जीवन को एक रिलीजियोसिटी के रूप में करते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में अंतर है। बाबा ने कहा है, देखो एक सुंदर ये कहावत है, आप पढ़िए अच्छी तरह से समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ मेडिटेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच यू डू और हाउ कमिटेड यू आर। आप जो मेडिटेशन करते हो उसका महत्व आप कितने समय तक करते हो और कितना कमिटेड होके करते हो उसका ज्यादा महत्व नहीं है। किसका महत्व है फिर? रेदर द वैल्यू इज मेजर्ड इन हाउ यू आर एबल टू यूज इट एंड इफ इट मेक्स ए डिफरेंस इन योर लाइफ। योग शक्ति को, योग बल को आप अपने जीवन में कितना प्रयोग करते हो और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है क्या, तब कहेंगे वो मेडिटेशन का कुछ महत्व है। जैसे एक एग्जाम्पल देने से क्लियर होगा, कोई एक सिपाही है, सवेरे सवेरे उठ के एक घंटा पूरा डेली पूरा लेफ्ट राइट करता है, रात को भी लेफ्ट राइट करता है, लेकिन कभी भी एक कोई दुश्मन आ गया, कोई आतंकवादी आ गया, तो उसका राइफल ही हाथ से गिर जाता है। क्या फायदा हुआ लेफ्ट राइट करने का? तो इस प्रकार लाल लाइट में मैं आत्मा हूं और जैसे सफेद लाइट आता बाहर आता तो गुस्सा करना शुरू कर दिया, क्या फायदा हुआ फिर? तो इसलिए हम मेडिटेशन कितने घंटा बैठ के करते हैं, कितने बार मुरली पढ़ते हैं, उसकी वैल्यू तब है जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन भी आया हो, हमारे संबंध में। लोग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देखना चाहते हैं, हमारे बोल व्यवहार चाल चलन आचरण व्यवहार अगर उसमें परिवर्तन नहीं है तो ये फिर रिलीजियोसिटी है, ये खाली दिखावा के लिए है, लोग कहते हैं ढोंगी है। तो बाबा को हम प्रत्यक्ष अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मूल कारण यही है। जगदीश भाई लास्ट क्लास में इधर कहते थे, आपको याद होगा जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, कहते थे मेरे भाई और बहनों, मैं कलम से लिखने द्वारा भाषण करके बाबा को प्रत्यक्ष करने चाहा, जी जान लगा दिया मेरा, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। मेरे भाई और बहनों, आप सभी फरिश्ते बनो तो बाबा प्रत्यक्ष होगा। कहने का मतलब है हम जो भी करते हैं, बाबा जो शिक्षा दे रहे हैं, उसको रिलीजियसिटी के रूप में नहीं, एक जस्ट एक नेमीनाथ के रूप में नहीं, वास्तव में हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे संबंध में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। लोग उसको कभी नहीं पूछेंगे आप कितनी बार मुरली पढ़ते हो, कभी नहीं पूछेंगे कितने बजे उठते हो, कितने घंटा योग करते हो, लेकिन हमारा बोल कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे संबंध कैसा है, आपस में कितना प्रेम प्यार है, वो दिखता है लोगों को। तो प्रैक्टिकल आचरण में स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, ना कि रिलीजियोसिटी। तो देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन ब्रिंग्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सचमुच हम रियलाइज अपने आप को किए हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर कई लोग कहते हैं कैसे हो भाई, तो कहते हैं यथा पूर्वम तथा परम, चलती का नाम गाड़ी। तो फिर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, 10 साल हो गया, कोई जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे को ऐसे ही है, तो क्या फायदा हुआ, 10 साल तो बर्बाद हो गया ना। तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, वो देखने की आवश्यकता है। तो व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ये चित्र में क्या देख रहे हैं आप? एक बिल्ली है, लेकिन मिरर में क्या देख रहा है, क्या मतलब है? देखो, आप अगर द लायन किंग पिक्चर देखे हो, याद होगा, तो वास्तव में हम अभी तक अपने आप को क्या कहते थे, क्या समझते थे? मैं तो हे प्रभु तुम्हारे चरण के धूल हूं, मैं तो दास हूं, मैं तुम्हारा किंकर हूं, क्या क्या नहीं बोलते थे। भगवान ने क्या कहा? अरे मेरे बच्चे, तुम विश्व के मालिक हो, तुम क्या समझ के रखे हो अपने आप को, तुम कौन हो? तो बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं, जो रियलाइज करता है, तुम शेर के बच्चे, शेर हो बच्चे, तुम बिल्ली थोड़ी हो। तो बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं, और रियलाइजेशन जो करता है उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सो सेल्फ रियलाइजेशन दिस साइंस, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। The science of self-realization, discovering the science of you and your innate potential. हमारे अंदर इतनी असीम शक्ति है, आप सोच भी नहीं सकते. मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन उसको हमें पता ही नहीं था. जैसे रामायण में बताते हैं, हनुमान जब तक राम जी से नहीं मिला था, अपने आप को एक साधारण बंदर समझता था, लेकिन राम जी से मिलने के बाद क्या हुआ, महावीर बन गया. तो कहने का मतलब, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, असीम शक्तियां, हम रियलाइज नहीं करते, हम जानते नहीं है, लेकिन भगवान अभी हमें रियलाइज करा रहे हैं. मेरे बच्चे, तुम कौन हो? तुम विश्व परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो. तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम मेरे साथ कनेक्शन जोड़ के तो देखो, तुम्हें इतनी असीम लाइट और माइट मिलेगी. तुम स्वयं तो क्या समग्र विश्व को परिवर्तन कर सकते हो. तो बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं. सो योर शॉर्टकट टू ए हैप्पियर, फुलफिल्ड एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिस्कवर ए रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी दैट लेट्स यू एक्सपीरियंस ऑल द बेनिफिट्स ऑफ डीप मेडिटेशन इन ए मैटर ऑफ मिनट्स. तो बाबा जो विधि हमें बताते हैं, लोग तो ऋषि मुनि सारा जीवन, हजारों साल हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, दिमाग एकदम चढ़ गए, मिट्टी में ढक गए, तो भी जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं पाए, एक झलक के लिए. लेकिन बाबा के बच्चे, हम बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे साथ कनेक्शन जोड़ के देखो, तुम्हें इतनी असीम शक्ति, अथाह शक्ति, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन के क्या नहीं कर सकते हो. तो देखिए, द स्टेज ऑफ मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी. तो बाबा हमें आप समान सर्वशक्तिवान बना रहे हैं, और साथ साथ बाबा हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करा रहे हैं, जो देवताओं को भी नहीं हो सकता है. देवताओं का भी, उनके जीवन से भी हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ है. तो बाबा अभी हमें रियलाइज करा रहे हैं, जो अभी नहीं किया, अभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं. तो हमारे वास्तव में योग, तपस्या में, साधना में ये अनुभव होना चाहिए. लेकिन साथ साथ इसकी और क्या निशानी है? अगर सचमुच हम साधक हैं, हम सभी साधना कर रहे हैं. मैं अभी भी कभी वो गुरु शिखर की तरफ कभी जाते हैं, हम कई लोगों को वहां देखा हूं, तो पूछते हैं, आप कहां से आए हो? मैं कई बार परिचय दिया हूं, देखिए मैं ग्लोबल हॉस्पिटल से हूं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम तो यहां से इतने साल से सेवा कर रहे हैं, आप कभी भी आना. आपको आश्चर्य लगेगा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं उधर, कहते हैं हम तो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, कुछ बीमारी नहीं होती हमें तो, कितने साल कभी नौबत ही नहीं आई कि हमको हॉस्पिटल जाने की, यहाँ जड़ी बूटी है, हम कुछ खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं. तो अभी भी हमारे देश में ऐसे, वो जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे अभी भी जोगी है, सन्यासी लोग हैं, वो भी कहते हैं हम इतने एक पत्ता खा लेते हैं, हमको कोई भूख नहीं लगती है, बिल्कुल अभी भी ऐसे है. कहने का मतलब है, दुनिया वाले भी स्वस्थ जीवन जीने की कला उनको है. अगर हम भगवान को पाने के बाद भी हम अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं, बाबा तो कहते हैं कोई अगर बार बार बीमार पड़ता है तो वो उसकी ही गलती है, अज्ञानता है. ज्ञान सिर्फ आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, साथ साथ शरीर का भी ज्ञान होना आवश्यक है. नहीं तो शरीर एक गाड़ी है, कोई एक गाड़ी चला रहा है और गाड़ी का कुछ पता नहीं, खाली स्टीयरिंग लेके चला रहा है, कुछ पता नहीं क्या होगा, कहीं भी एक्सीडेंट करेगा. तो इसलिए शरीर का ज्ञान भी होना चाहिए, कैसे संपूर्ण स्वस्थ रहे. जिसको अकल नहीं है, वास्तव में वो पुरुषार्थ में भी आगे नहीं जा सकता है. इसलिए मैं बहुत आपको लंबा चौड़ा नहीं सुनाऊंगा, तीन बातें सुनाऊंगा जिससे आप संपूर्ण स्वस्थ रह सकते हो. वो तीन है, फिजिकली एक्टिव लाइफ, अर्थात शारीरिक कुछ ना कुछ हम मेहनत करें. जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा प्रैक्टिकल हमारे सामने उदाहरण है. बाबा दूसरे महंत जैसे महामंडलेश्वर बैठ के अपने पांव दबाने के लिए शिष्यों को बुलाते रहते हैं, हिलते नहीं है, इतने बड़े बड़े पेट करके सेठ जैसा बैठ के. बाबा ऐसा नहीं थे, बाबा तो अपना चरण भी छूने नहीं देते थे किसी को, उल्टा ही पानी का लोटा लेके बाबा खड़ा रहते थे, कोई आता था तो उनके पांव धुलाई कर देते थे. बाबा एक पितृवत स्नेह वात्सल्य प्रेम ममता दे के लोगों की पालना किए, तब तो इतने हजारों करोड़ों लोगों के दिल पर आज भी राज कर रहे हैं. तो देखिए, बाबा जैसा ऐसे कर्मठ जीवन हो, बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, हमारा भोजन शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए. आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, देखिए वहाँ सात्विक राजसिक तामसिक तीन प्रकार का भोजन के बारे में वर्णन है. लेकिन मैं आपको एक बात जो बहुत सालों पहले मेरे मन में टच हुआ था, जो मैं जगदीश भाई को पूछा था भी, कि मैं बताया भाई साहब, मैं पहले गीता बहुत बार पढ़ा था, तो जगदीश भाई को बताया कि भाई साहब हमारे यहाँ जो भोजन बनता है ये तो सात्विक भोजन नहीं है, मुझे तो पूरा राजसिक भोजन लगता है. तो जगदीश भाई ने कहा कि आपको किसने कहा, यहाँ तो बहुत वैरायटी भोजन बनता है, ये बाबा का घर खाली आश्रम नहीं है, यहाँ बहुत सारे मेहमान भी आते हैं, यहाँ मेहमान आप घर में दाल रोटी भले खाओ, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको जरूर खातरी करने के लिए कुछ तो मेहमान नवाजी किया जाता है। तो यहाँ आए दिन गेस्ट आते हैं और उनको सूखा सूखा ये सब खिलाओगे तो अच्छा लगेगा। कोई कितने 10 साल के बाद बाबा के घर में आया है, कोई पहली बार आया है, तो उनको खातरी करने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन आपको किसने कहा कि डेली समोसा खाओ, डेली ये रसना पियो, डेली ये सब आइसक्रीम खाओ? आपको किसने कहा? ये सब बाबा का घर आश्रम के साथ साथ ये मेहमान भी आते हैं यहाँ, तो खातरी करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ बिना मिर्ची वाला भी बनता है, कम तेल वाला भी बनता है, सिंपल बनता है, आपको सिंपल खाना चाहिए। किसने कहा सब कुछ खाने के लिए? तो कहने का मतलब है वास्तव में हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। और शुद्ध सात्विक भोजन किसे कहा जाता है, बैलेंस वेजिटेरियन डाइट किसे कहा जाता है, अगर हमने नहीं समझा तो कभी भी जीवन में वास्तव में आध्यात्मिक साधना में भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं लच्छू दादी को कितने बार पूछा था कि बाबा क्या खाते थे बताओ ना दादी। लच्छू दादी मुझे कहती थी कि बाबा को सारे जीवन में सूखी रोटी, इतनी छोटी छोटी फुल्का, 3 से 4 खाते हुए कभी नहीं देखा बाबा को। वैरायटी सब्जी खाते थे, दाल खाते थे, सब खाते थे। कोई बाबा के बच्चों के लिए बाबा बहुत वैरायटी बनवाते थे, लेकिन उनको खुश करने के लिए थोड़ा सा जस्ट टेस्ट कर लेते थे, लेकिन सब बच्चों को खिलाते थे, खुद बाबा नहीं खाते थे। बाबा का भोजन बिल्कुल सिंपल था। कहने का मतलब है बाबा के घर में कुछ कमी नहीं है, कहीं ताला चाबी नहीं है। आप चाय भी पियो तो नलका खोल के पियो। दुनिया में आईएएस ऑफिसर भी, एक आईएएस ऑफिसर आया था, बोला कि आप लोगों का जीवन हमारे जीवन से 1000 गुना बेहतर है, 1000000 गुना बेहतर है, एक आईएएस ऑफिसर कहता है। तालियां तो बजाओ। अरे बाबा के बच्चे हम सभी, कोई राजकुमार भी मैं कहूंगा, एक राजकुमार भी जिस प्रकार की पालना बाबा हमें दे रहे हैं, अजी अभी एक राजकुमार को भी नहीं मिल सकता है। किसके घर में 2 बजे 3 बजे चाय पूरा ड्रम में, कॉफी चाहिए तो कॉफी, दूध चाहिए तो दूध, किसके घर में 2 बजे 3 बजे बनता है, ढूंढ के आ जाए दुनिया में। और वो भी नलका खोल के, जितना चाहो भर के पियो, इतना कप देगा। आप जाएंगे अभी आपको आश्चर्य लगेगा, आप प्लेन में कभी जाइए, एक कप चाय कितना जानते हो? 80 रुपया, 80 रुपया एक एक ग्लास, एक बोतल पानी 250 ml का 50 रुपया। और बाबा के घर में हम इतनी इतनी चाय, इतने थोड़ा सा इतना होगा 10 रुपया लेके लोग पीते हैं। तो हम बाबा के घर में जिस प्रकार की हमें पालना मिल रही है, सचमुच अहो सौभाग्य। जो शास्त्र में कहावत है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, जो कहावत है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा ते सुख घनेरे, जिस घनेरे सुख अभी हमें मिल रहा है और क्या चाहिए अगर जीवन में। लेकिन हम अगर जो मर्जी सो खाएंगे तो बीमारी होंगी। तो जगदीश भाई ने मेरा कान पकड़ा लगे, आपको किसने खाए सब खाने के लिए? वो सब तो मेहमानों के लिए बन रहा है, आप सिंपल खाना खाओ। कहने का मतलब है हमें समझदार बनकर हमें क्या खाना है देखना है। दूसरा, स्ट्रेस रिलीविंग। जीवन में, दुनिया में सब तनाव से ग्रस्त हैं और सब प्रकार की बीमारियां हो रहा है, लेकिन हम कहीं स्ट्रेस से ग्रसित तो नहीं है? खुद को पूछने की आवश्यकता है। हम बाबा के बच्चे बनकर भी हमें अगर चिंता है, टेंशन है, परेशानी है, तो दुनिया की परेशानी को कौन मिटाएगा? सारी दुनिया को, चिंता को मिटाने वाले हम हैं बाबा के बच्चे। हमें भी टेंशन है, हमें भी चिंता है, तो हमारी चिंता कौन मिटाएगा फिर? तो सोचिए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ जीवन जीने के लिए। बहुत साल पहले शेक्सपियर टोल्ड, लेट मी नो योर डाइट आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम क्या खाते हो मुझे बता दोगे तो मैं तुमको बता दूंगा तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो। लेट मी नो योर फ्रेंड्स आई विल टेल व्हाट यू आर। तुम किसके साथ उठते बैठते हो बता दो, मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी हो। तो शेक्सपियर ने कहा था। इस प्रकार बाबा भी हमें क्या कहते हैं, बच्चे जीवन में 2 शत्रु है, संग दोष और अन्न दोष। तो देखिए, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ डाइट एंड गुड हेल्थ इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जीवन में भोजन का और स्वास्थ्यकर जीवन का आध्यात्मिक प्रगति में क्या संबंध है, इसका मैं आपको बताऊंगा। देखो, शरीर एक गाड़ी की तरह है। कोई एक गाड़ी जब खरीदता है क्या करता है, डेली उसमें फ्यूल डालता है। अगर पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल डालता है, डीजल की गाड़ी तो डीजल डालता है, कि पेट्रोल की गाड़ी में किरोसिन भी डाल देता है। तो इसी प्रकार हम भी ये शरीर रूपी गाड़ी में क्या डाल रहे हैं, देखिए, सही फ्यूल डाल रहे हैं कि कुछ भी डाल रहे हैं? क्योंकि देखिए, किसी गाड़ी में अगर रिजर्व से भी कम हो गया तो गाड़ी चलेगी, कि एकदम ओवरफ्लो कर दो तो गाड़ी चलेगी? दोनों ठीक नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी में अगर हम पूरा उपवास करते हैं 2-3 दिन तक, कि एक दिन भी कोई उपवास करता है। कई लोग तो सवेरे 12 बजे तक कहेंगे कुछ नहीं खाना। हमारे देश में बिना आपसे कंसल्टेशन फीस लिए हुए आपको जिधर देखो तो डॉक्टर मिलेंगे, कुछ भी आपको गाइड करने उपदेश देने वाले बहुत होंगे बिना फीस लिए हुए। तो कई लोग कहते हैं 12 बजे तक बिल्कुल नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। रात को अगर 8 बजे खाते हो, दूसरे दिन 12 बजे तक अगर पानी भी नहीं पियो, तो ये ठीक है? सोचो तो सही। तो वास्तव में फास्टिंग करना मना है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। जो योगी है संतुलित भोजन वाले। वही बात आज ही साइंटिस्ट लोग प्रूफ करके बता रहे हैं, जो बहुत खाता है कम खाता है उसको ही सारी बीमारियां हो रही है। इसलिए नहीं, बैलेंस डाइट, हमेशा पेट का 1/3 खाली होना चाहिए। हम इतना कभी कभी खा लेते थे औड़ी करके सारा गैस निकलते तक, आँख करने से दिखेगा क्या है अंदर। कभी एकदम जम के अगर अच्छी सब्जी हो गई कुछ हो गया तो बस इतना खा लेंगे बात मत पूछो। और जिस दिन मन पसंद नहीं है, आज तो भूख नहीं है, तो क्या ये ब्रह्मा भोजन के लिए रिगार्ड है? नहीं। बाबा के घर में जो क्या प्रॉमिस किए हैं सब, जो खिलाओ जो पिलाओ जहां बिठाओ जो सिलाओ, तो फिर तो इसलिए फिस्टिंग फास्टिंग दोनों मना है। अगर जो फास्टिंग करते हैं उनको ही हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सर होता है पेट में, उनको ही गाउट प्रेसिपिटेट हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियां होती है, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए फास्टिंग करना मना है। इस प्रकार बहुत खाना भी मना है, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। तो देखिए आज प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को कि मैं सही भोजन सही फ्यूल ये शरीर रूपी गाड़ी में डाल रहा हूं, क्योंकि आज लोगों को कैंसर बहुत होता जा रहा है और साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि 5 मुख्य चीजें जो कैंसर के बहुत मुख्य कारण है, 5 मुख्य चीजें खान पान के। वो 5 चीजें कौन है जानते हो? ये क्या चीज है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हॉट डॉग। ये बड़े बड़े सिटी में मिलते हैं, बाबा के बच्चे हम सुरक्षित है नहीं खाते हैं। इसमें से मटन से लेके क्या क्या सारी गंदी चीजें हैं, इसमें कैंसर होता है, ट्रांसफैट बहुत होता है, नाइट्रेट्स बहुत होते हैं। बहुत लोग ये बहुत प्रिय खाद्य है, मैकडोनाल्ड शॉप में जाके ये सब खाते रहते हैं। दूसरा है क्या चीज है, द बर्गर किंग, इसको बर्गर कहते हैं, हम बर्गर कहते हैं। इसमें भी सब गंदी चीजें हैं, सब ये भी लोग खाते रहते हैं। ये हम बाबा के बच्चे तो सुरक्षित है। तीसरा ये क्या है, ये भी आपको नहीं पता होगा, ये भी डूनट है, ये भी नहीं खाते हैं, डाउनट कहते हैं इसको भी। इसमें भी सब गंदी चीजें हैं, लेकिन ये हमको सबको पता है क्या है, ये फॉरेनर सीजन में खूब बनता है, ऊपर डाइनिंग हॉल में खूब खिलाते हैं हम। आलू को अच्छी तरह से तल के इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, इसको साइंटिस्ट लोग कहते हैं कैंसर फ्राइज। ये हमारे लिए नुकसानकारक है, नहीं खाना है। कभी एक दिन खा लिया ठीक है, रोज रोज ये सब खाने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी अच्छी तरह से आप सभी को पता है क्या चीज है, आजकल मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूं तो रास्ते में देखता हूं सारे लोग ये कुरकुरे मुरमुरे चिप्स खा रहे हैं, सब पूरा पैकेट फाड़ फाड़ के। पानी तो नहीं पी रहे हैं, खाली क्या पी रहे हैं जानते हो क्या पीते हैं? तो ये सब बहुत नुकसानकारक है। इसमें जो तलते हैं उसमें कोई भी तेल, किचन वाले सभी प्लीज ध्यान से सुनिए, कभी भी तेल लेके कभी भी डीप फ्राई करते हैं तलते हैं, एक तो तेल अगर तलते हैं तो राइस ब्रान तेल सबसे अच्छा है। राइस ब्रान तेल अगर वो मिलता है उसमें तलेंगे तो कम से कम चूसेगा। अगर वो नहीं है तो मूंगफली तेल में तलना चाहिए, बाकी दूसरे तेल में नहीं तलना चाहिए। दूसरे तेल में तलेंगे तो वो ज्यादा चूसेगा, जो भी खाएंगे उसमें तेल ज्यादा जाएगा, मोटे होंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। दूसरी बात है, अगर कड़ाई में हम तेल लेके तलते हैं, बच गया फिर रख देते हैं, दूसरे दिन फिर गर्म करके फिर तलेंगे, तीसरा दिन फिर गर्म करके फिर तलेंगे, वो सारे तेल पॉइजन हो जाता है, उसमें डीनेचर्ड हो जाता है, उसमें ट्रांसफैट हो जाता है, जो हार्ट अटैक कराता है, सारे प्रॉब्लम करता है। तो जितना तलना है अंदाजा से उतना ही तेल लेके तलें, और जो बच जाता है उसको उसी दिन ही छोंक लगा के जो करके भी पूरा कर दे। ऐसा नहीं कि उसको 15 दिन तक गर्म करते करते तलते रहे, ये बहुत नुकसानकारक है। अब हम इकोनॉमी करके बचाव करने के लिए रखते हैं करते हैं, लेकिन उससे इतने लोगों को हार्ट अटैक होगा, इतने लोगों की क्षति होगी कि आप 10 रुपया बचाओगे लाखों रुपया जाएगा। इसलिए बी केयरफुल, ये सब बातें माता है, अच्छी तरह से कान खोल के सुनिए। تو یہ چپس وغیرہ اس میں اتنے تیل ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. میں کبھی ایک چپ جلا کے دکھاؤں گا, آپ سوچ میں پڑ جائیں گے. ایک چپ میں 50 بوند تیل تھپ تھپ گرتا ہے, تھپ تھپ گرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں پھر بھی اتنے موٹے ہیں. جب کوئی چپس کھاتا ہے کتنا کھاتا ہے, ایک دو کھاتا ہے, پیکٹ پیکٹ کھا جاتا ہے. تو یہ سب نقصان کارک ہے. کبھی ایک دن کھایا, ونس ان وائل مہینے میں ایک دن کھا لیا ٹھیک ہے, لیکن یہ روز روز ایسی چیزیں لوگ کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں ان ہیلدی فوڈ ہے, یہ سب چیزیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے بابا کے بچے. باہر کی چیزیں تو بالکل ٹچ, کہتے ہیں یہ مشین میڈ ہے نا, آج کل سب مشین میڈ کہے کہ سب کھاتے رہتے ہیں. آپ کبھی دیکھنا اس میں انگریڈینٹ کیا کیا ہوتا ہے, سب گندی چیزیں ہوتی ہے. ودیشی لوگ آ کے تو ہمارے دھرم بھرشٹ کرم بھرشٹ کرا دیے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. کیونکہ ہمارے کلچر میں کیک سسٹم نہیں تھا. آپ پوچھ لیجئے جب ودیشی نے تھے ہمارے سلو بہن جی کو پوچھ لیجئے, پہلے ہمارے کیک کٹنگ ہوتی تھی ادھر, کیک کٹنگ سیرمنی بالکل نہیں. ودیشی لوگ آ کے کیک کٹنگ سیرمنی شروع کیے اور برتھ ڈے کیا کرتے ہیں, ادھر موم بتی جلائیں گے اور کیا کریں گے, پھو کر کے سب پھونکیں گے اس کو, موم بتی سارے تھوک سے کیک میں, پھر کاٹ کے کھائیں گے سبھی کے. کتنا بڑھیا کلچر ہے. تو ہمارے دیش کا یہ کلچر ہی نہیں تھا یہ سب چیزیں. ایک بار ودیشی ایک بھائی آ کے کہتا ہے کہ چاکلیٹ یہ تو پورا مشین میڈ ہے, کھاؤ کھاؤ. لوگ کھا گئے, میں اس کا پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہے ایگ لیسیتھن, انڈے کا وہ لیسیتھن اس میں ہے. بولا ہو گیا نا دھرم بھرشٹ, تو کاہے کو کھانا ہے ایسی چیزیں. باہر کے بازار کی چیزیں ٹچ ہی نہیں کرنا ہے, بالکل چھونا ہی نہیں, بالکل نہیں کھانا ہے. آج کل بسکٹ میں بھی بہت سارے اس میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے, وہ بھی ہارٹ اٹیک کرتا ہے. مشین میڈ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو, نہیں کھانا ہے, نہیں کھانا ہے. یہ سب گندی چیزیں ہیں, ہمارے سواستھیہ کے لیے بھی نقصان کارک ہے اور دھرم بھرشٹ کی بات بھی ہے. اور دوسری بات ہے یہ سب کولڈ ڈرنکس آدی کئی پرکار کے ڈرنکس پیتے ہیں, یہ سب گرمی کے موسم میں خاص کر کے رسنا سے لے کے کیا کیا پیتے رہتے ہیں, یہ بھی شوگر ایک دم سوٹ کر جاتا ہے. یہ سب کوئی بھی جوس پینا شریر کے لیے نقصان کارک ہے. پہلے زمانے میں ہم ہول چیز کھاتے تھے تو اس کا ریسا وغیرہ ہمارے شریر میں جاتا تھا, کینسر نہیں ہوتا ہے, کانسٹیپیشن نہیں ہوتا ہے ریسا کھانے سے. لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے, ایک دم وہ جوسر میں گر کر دیا, جوس نکل کے پی دیا, شوگر بھی ٹھس 400 ایک دم سیدھا. تو اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں, اگر کوئی چبا کے کھائیں گے تو مسوڑے کا بھی ایکسرسائز ہوگا. تو اس لیے جوس آدھی نہیں پینا ہے. تیسرا یہ سب چیزیں نہیں پینا ہے. جو نہیں پیتے ہیں ہاتھ اٹھائیے پلیز, تھینک یو. جو پیتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ. لیکن میں ایک ریکویسٹ کروں گا ابھی کہ میرے بھائی اور بہنوں یہ سب ٹچ ہی نہیں کرنا ہے, اس میں خالی زہر ہے, پوائزن کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. اس میں 50 پیسہ کا بھی فوڈ ویلو نہیں ہے. لیکن ملٹی نیشنل کمپنیز آپ سبھی کو ٹھگ رہے ہیں, لوگوں کو. یہ سب بڑے بڑے فلم ایکٹر پی رہے ہیں, یہ پی رہے ہیں, کرکٹ اسٹار پی رہے ہیں, دکھا کے ٹھگ رہے ہیں. اس میں لیٹرین صاف کرنے والے جو کیمیکلس ہوتا ہے سب ہوتا ہے. تو ساری گندی چیزیں ہیں, یہ بالکل نہیں پینا ہے, بالکل نہیں پینا ہے یہ سب. اور یہ سب چیزیں کبھی کبھی کھاؤ چلے گا, پوڑی پیڑا پکوڑا پیزا پکوان پراٹھا, یہ سب کھا کے ہی ہم موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور سارے کولیسٹرول چربی ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. یہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار تھوڑا کھا لیا چلے گا, لیکن جس دن کھاتے ہیں پھر نارملی جو روز کھاتے ہیں وہ تیاگ کرنا چاہیے. یہ جم کے کھا لیا, پھر چاول بھی جم کے کھا لیا, پھر روٹی بھی کھا لیا, پھر سب کھا لیا, نہیں ایسا نہیں. یہ سب چیزیں, یہ فیسٹیول فوڈز کبھی کبھی برہما بھوجن ہوتا ہے, دادی آپ کو پیار سے بناتے ہیں کھلاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کتنا کھانا چاہیے سوچ سمجھ کے کھانا چاہیے. زیادہ کھانے سے ہی ہم موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور موٹے ہونے سے ہی ساری بیماریاں ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں میں کیوں منع کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے. جو دیکھا گیا 2% ٹرانس فیٹس کم کر دینے سے 53% ہارٹ اٹیک کم ہو رہا ہے. تو یہ سب کھا کے آج کل 20 سال عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اس لیے یہ سب چیزیں منع ہے, ہمارے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. تو یہ سب کیوں منع کر رہا ہوں, فاسٹ فوڈ کیوں کہتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ محنت کرنے نہیں پڑے گا, لاؤ فٹافٹ پھاڑو کھاؤ, تو شوگر بھی فٹافٹ بڑھتا ہے, بلڈ پریشر فٹافٹ بڑھتا ہے, سب ایک دم فاسٹ بڑھتا ہے. اس کے کارن ہی موٹاپا, بلڈ پریشر, ہارٹ کی بیماری, ڈائبٹیز, کینسر, ساری بیماریاں ہو رہی. اس میں پریزرویٹو سوچتی ہے جو کینسر کرتا ہے, اس میں کیلوری بہت ہوتا ہے, فیٹ سوڈیم زیادہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, اس میں فائبر کچھ نہیں ہوتا ہے, جس کے کارن ہی کانسٹیپیشن ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں بالکل ہمارے لیے بالکل منع ہے. سو چینج یور ڈائٹ اینڈ چینج یور لائف. ہم اگر اپنے جیون کو سدھارنا چاہتے ہیں, ہمارا بھوجن بالکل سنتولت شدھ ساتوک بھوجن ہونا چاہیے, تو ہی ہم آدھیاتمک پرسارتھ میں بھی, سیوا میں بھی, سب باتوں میں ہم آگے جا سکتے ہیں. So a healthy diet is one in which the balance between macronutrients and micronutrients is maintained. उसको हेल्दी डाइट कहते हैं, जिसमें सब प्रकार का हो, चावल भी हो, चपाती भी हो, दाल भी हो, सब्जी भी हो, सब वैरायटी हो, तब कहेंगे बैलेंस डाइट। देखिए हमारे भोजन में अक्सर करके हम जो खाते हैं भारतवर्ष में ऐसे खाते हैं, जो ट्रे होता है हमारा ये जो बड़ा हिस्सा है इसमें चावल चपाती पूरा लाद लाद के डाल देंगे, थोड़ी सी इमली मिर्ची चटनी डाल ले लिया हो गया। लेकिन नहीं, यही खा के ही भारतवर्ष में लोगों को डायबिटीज ज्यादा हो रहा है, मोटा ज्यादा होते जा रहे हैं। हमारा भोजन का प्लेट ऐसा होना चाहिए, देखिए इसमें तीन चपाती है सूखी, इसमें तेल फेल नहीं है, सूखी चपाती। अगर आपको चावल खाना है तो एक कटोरी अगर लेते हैं इतना, तो एक चपाती कम। जो बहुत मेहनत कर रहा है, तगारी उठा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, चले पांच छह खा लिया चलेगा। लेकिन जो साधारण सिंपल जो ऑर्डिनरी काम करने वाले, तीन चपाती खाना चाहिए। थोड़े से सब्जी लीजिए, सलाद लीजिए, कोई भी दाल छोले कोई भी लो, दही थोड़ा लो, दही सूट करता है तो दही सभी को खाना चाहिए। कई लोग कहते हैं दूध दही नहीं खाओ, लेकिन दूध दही नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम कहाँ से आएगा, फिर हड्डी कमजोर हो जाती है, माताओं का खास जरा सब गिरेंगे फ्रैक्चर हो जाता है। तो दूध दही खाना चाहिए, जो दूध दही नहीं खाता है मैं तो कहूंगा कृष्ण की दुनिया में जाएंगे नहीं आप, क्योंकि कृष्ण की दुनिया में तो दूध दही ही होगा। तो इसलिए लेना जरूरी है, लेकिन मलाई निकाल के, दही भी जमाते हैं तो मलाई निकाल के जमाओ तो बहुत अच्छा। एक कप डेली, एक कटोरी दही, एक कप दूध पियो, अच्छा है, उतना शरीर के लिए ठीक है। और नींबू अगर रोज ले सकते हो, एक नींबू डेली, आधा नींबू डेली खाए, तो नींबू में विटामिन सी है तो आपके मसूड़े ठीक रहेंगे, आपके वेट कम होगा, आपका बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। नींबू का सबसे बढ़िया गुण है कैंसर नहीं होगा, एंटी कैंसरस है, तो इसलिए नींबू भी लेना चाहिए। तो हमारा आइडियल मॉडल प्लेट ऐसा होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, योगी का भोजन ऐसा होना चाहिए, जो साइंटिस्ट भी कहते हैं। और कोई अगर अपना वजन घटाना चाहता है, मोटा हो गया है, तो उसका थाली में 50% वेजिटेबल होना चाहिए, साग सब्जियां 50% और 25% चावल चपाती, 25% दालें, थोड़ा सा दही ले लिया ठीक है। फ्रूट्स आदि खाने के समय नहीं लेना चाहिए, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हो या लंच और डिनर के बीच में हो तो ठीक है। किसी का अगर वेट ठीक है, मेंटेन करना चाहता है, तो वन थर्ड थाली में 1/3 सब्जी हो, 1/3 चावल चपाती, 1/3 दालें, ऐसा होना चाहिए। आज कुछ खाने पीने की चीज ऐसे होते हैं जो खाते ही एकदम शुगर फट से बढ़ जाता है, उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं मैदा का ब्रेड नहीं बनाना चाहिए, मैदा का ब्रेड एकदम खाते ही शुगर फट से शूट कर जाता है। अगर आटे का बनाते हैं तो नहीं शूट करेगा, लेकिन मैदा का रहता है लंबे समय तक, बनाना भी इजी है इसलिए बनाते हैं। लेकिन वास्तव में आटे का ब्रेड ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैदे का अच्छा नहीं है। तो कई चीजें जैसे देखिए ये छिलके वाले जो भी चीजें हैं, अनाज है, ये सब्जियां है, ये फ्रूट्स है, ये खाते ही फट से नहीं बढ़ेगा। अगर छिलका निकाल दिया जाता है तो खाते ही फट से शुगर बढ़ता है। इस प्रकार देखिए ये आटे का ब्रेड है, रोटी है, ओट्स है, ये सब चीजें मीडियम बढ़ता है शुगर। लेकिन चावल ले लिया, पोहा ले लिया, आलू ले लिया, हनी ले लिया, फल का रस ले लिया, मिठाइयां, आम, ये सब खाते ही शुगर एकदम फट से बढ़ता है। इसलिए ऐसी चीजें जितना कम हो उतना अच्छा है। तो भारतवर्ष में ये देखा गया है कि हम सभी बहुत चावल खाते हैं, चावल चपाती और रिफाइंड चीजें, बासमती चावल, रिफाइंड चीजें खाते जा रहे हैं, मैदा आदि, जिसके कारण ही ये सब शुगर आदि हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हम नमक ज्यादा खा रहे हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण हार्ट की बीमारियां भी ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है। तो हमारे भोजन में तेल घी जितना कम हो सके और नमक जितना कम हो सके उतना अच्छा है। साग सब्जी फूल ये फ्रूट्स आदि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। चावल चपाती कम खाएं तो सदा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे भी योगी का भोजन ज्यादा फल सब्जियां होनी चाहिए। अनाज ज्यादा खाने से ही नींद आती है, जो बहुत मेहनत करते हैं अनाज तो खाना जरूरी है, लेकिन वो भी कम हो तो अच्छा है। तो हमारे भोजन में ज्यादा से ज्यादा देखिए ये सब वेजिटेबल्स आदि होना चाहिए, अनाज थोड़ा कम और ये सब दालें और थोड़ा कम, मिल्क प्रोडक्ट कम, सबसे कम तेल घी बटर मक्खन आइसक्रीम चॉकलेट ये सब जितना कम हो सके उतना अच्छा है। हमको पता होना चाहिए कि हम जो खाते हैं उसमें कितने कैलोरी है। आप देखिए एक चपाती खाते हैं तो 100 कैलोरीज होता है, एक अगर कटोरी इतना चावल खाते हैं तो 100 कैलोरीज होता है, एक एप्पल खाते हैं तो 100 कैलोरीज होता है, एक समोसा खा लिया 250-300 कैलोरी होगा, एक गुलाब जामुन खा लिया 200 कैलोरी, एक प्लेट रबड़ी खा लिया 600 कैलोरी 700 कैलोरी। तो डेली हमारा भोजन 1200 से 1500 किलोरी तक होना चाहिए, 1500 किलोरी होना चाहिए। अगर इतना ग्लास भर भर के दो पूरा आइसक्रीम खा लिया, बस सारा दिन का हो गया। दो पूरा इतना एकदम चाय पी लिया तो पूरा एक भोजन के साथ समान हो गया। तो हम कितना खाते हैं सोचना चाहिए, उसमें कितने कैलोरी। एक बहन आई थी इतनी मोटी, मैं बोला कि बहन जी थोड़ा ध्यान तो दो। कहती है कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ। बोला कि ठीक है, मैं आपको नहीं पूछता हूँ क्या खाती हो, लेकिन किसमें कितनी कैलोरी होती है आप थोड़ा गिनती करना, और कल सारे सवेरे से लेकर रात तक कितनी कैलोरी खाई हो बताना। तो 5 मिनट रुक के ही कहते भाई साहब मैं तो कल 5000 कैलोरी खाई हूँ। खाना चाहिए 1500, 5000 खाए तो कितने गुना मोटा होगा सोचिए। तो इसलिए हम कितना खाते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कितने कैलोरी होती है वो भी कॉन्शियस होना चाहिए, जानना जरूरी है। सो टू लेंथन द लाइफ लेसन द मील, जो जितना कम खाता है वो ही स्वस्थ रह सकता है। इसलिए कम खाने से कोई बीमारी नहीं होती है, ज्यादा खा खाए ही हम बीमार होते जा रहे हैं। दूसरी बात है हम फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने लॉन्ग बैक महात्मा बुद्ध ने कहा था आवर बॉडी इज प्रेशियस, इट इज आवर व्हीकल फॉर अवेकनिंग, ट्रीट इट विथ केयर। हमारे शरीर एक गाड़ी है, एक रथ है, इसको अच्छी रीति से संभालो तो ही तो साधना कर सकोगे। जैसे गाड़ी की एग्जाम्पल आपको दे रहा था, किसी गाड़ी को अगर बहुत एकदम लाखों रुपया देके गाड़ी खरीद के ले आए लेकिन उसको खाली गैरेज में रखे रहे, चलाए ही नहीं, क्या होगा, क्या होगा, रस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार गाड़ी को 5 मिनट के लिए ही गैरेज से निकाल के आपको चलाना पड़ता है, घुमा के ला के रखना पड़ता है। इसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है, ये गाड़ी को भी चलाने की आवश्यकता है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनको ही सारी बीमारियां हो रही है, क्योंकि गाड़ी को चलाना जरूरी है तभी जाके एक एक जॉइंट्स मोबिलाइज होगा। इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, थोड़ा सा मेहनत तो करना चाहिए, जो भी हम झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन करें या सब्जी काटे, जो भी ये सब तो करना ही है, ऑफिस काम घर का काम तो करना ही है, लेकिन साथ साथ सारी जॉइंट्स को मोबिलाइज करने के लिए हमें थोड़ा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। जिसको एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है वो बीमार होकर हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए जरूर गारंटी करता हूं उसको टाइम मिलेगा। समझ में आया, जिसको एक्सरसाइज करने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है हॉस्पिटल में दाखिल होकर ट्रीटमेंट कराने के लिए फुर्सत मिलेगा जरूर। तो डॉक्टर इसलिए पूछता है कि आपको क्या पसंद है, क्या 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करो और सारा दिन चुस्त फुर्त रहो वो अच्छा है, कि बिना एक्सरसाइज के मुर्दे जैसा लटक के रहो वो अच्छा है। सो चेंज योर लाइफ, तो कहने का मतलब है कि देखिए हमेशा, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर को पूछना जरूरी है। आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर है शीर्षासन कर रहे हैं, नस फट जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, इधर हार्ट की बीमारी है और ठू 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 कपालभाति कर रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करना है सोचना है, डॉक्टर को बिना पूछे करना नहीं है। ये क्यों दिखा रहा हूं, कोई अगर बहुत मोटा है खाली चलने से कैसे चलेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा जंप लगाएंगे तो ही ये सारा वजन पिघलेगा, चर्बी पिघलेगा, तो करना चाहिए। जो कहते हैं ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए मोटों को, हाथ उठाओ उठाओ उठाओ, हाँ वेरी गुड। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही एक बहन आई थी मेरे पास टांग तोड़ के, तो मैं बोला बहन जी टांग कैसे टूटी, कहती है एक नेचुरोपैथी वाला आया था, कहता है बहन जी थोड़ा एक बच्चे जो स्कीपिंग रोप है रस्सी कुदा करो सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा, देखना 6 महीने में एकदम दुबली पतली हो जाएगी। तो रस्सी एक लेके आई, पहला दिन ही एक छलांग, दूसरी छलांग, तीसरा ऐसा हो गया, थोड़ा गिर पड़ी, फ्रैक्चर, प्लास्टर करके 1.5 महीना तक तो खटिया में लेटना पड़ा, 10 किलो वजन बढ़ गया। तो बी केयरफुल, ये सब कोई भी कुछ भी बताता है नहीं करना है, डॉक्टर को पूछ के ही करना है। देखिए हम सभी सत्युग त्रेता युग में तो बिल्कुल स्वस्थ थे, बिल्कुल स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं थी। द्वापर युग आया तब हम बीमार होने लगे, तभी बीमार होने लगे। तो फिर हमने देखा कि ये पेड़ पौधे को कभी बीमारी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहे, देखो ये पेड़ पौधे ऐसे खड़े हैं। तो हमने भी क्या किया, वृक्षासन करने लगे। फिर हम देखा कि ईगल पंछी को कभी भी, गरुड़ पंछी को कभी भी बीमारी नहीं, इतना ऊंचा उड़ता है गरुड़, ये तो विष्णु जी के वाहन भी है, تو ہم گروڑا آسن کرنے لگے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مروبھومی میں یہ اونٹ چھ چھ مہینہ تک پانی نہیں پیتا ہے پھر بھی کوئی بیماری نہیں ہے, تو ہم پھر اسٹرا آسن کرنے لگے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سانپ اس کو کوئی بیماری نہیں ہو رہی تو بھجنگا آسن کرنے لگے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مچھلی اس کو کبھی بیماری نہیں ہے تو متسیہ آسن کرنے لگے. پھر ہم نے دیکھا ہے خرگوش اس کو بھی بیماری نہیں ہے تو سسنگا آسن کرنے لگے. سویرے سویرے کتا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کرنے لگے. پھر کبھی تو منڈو کا آسن کرنے لگے تو کبھی کچھوا آسن کرنے لگے, کبھی ایسے پنچھی جیسا کرنے لگے. کہنے کا مطلب ہے ہم سبھی پشو پنچھیوں کو فالو کرنے لگے. لیکن سب سے شریشٹھ پرانی کون ہے, منشیہ ہے کہ پشو پنچھی ہے؟ تو پشو پنچھیوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ ہم کو وہ فالو کرنا چاہیے؟ کیا کرنا ہے, کون کس کو فالو کرے؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیے, کتا ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کرنے لگے. پھر کتا ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے کرنے لگے. تو ہم کیٹ یوگا اسٹائل, ہارس یوگا اسٹائل, ڈاگ یوگا اسٹائل کرنے لگے. لیکن آپ کو آشچر لگے گا, ابھی کیمبریج یونیورسٹی یو کے میں ایک 2012 کا یہ آپ کو نیوز دے رہا ہوں, ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے دیکھا یہ سب کرنے سے مینٹل النس بڑھ رہا ہے, مانسک وکرتیاں بڑھ رہی ہے یہ سب کرنے سے. یہ سب ستیوگت رہتا ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں لکشمی نارائن کون سے کپال بھاتی انلوم بلوم کرتے تھے, کون سا مرغاسن بکریسن چکراسن کرتے تھے؟ تو دیکھیے ابھی ڈاگ کیا کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی گاڈ کیا کر رہے ہیں ہم نہیں سن رہے. ارے گاڈ کہتے ہیں میرے بچے کیپ فٹ وتھ میوزک, تمہارے پوروج جو تھے لکشمی نارائن یہ کون سا ایکسرسائز کرتے تھے؟ کچھ ایسا یہ سب جو دنیا میں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے, نہ جم کھانا جا کے بلور کر ڈمبل یہ سب کرتے تھے. دیکھیے ستیوگ تریتا یوگ میں ہم سبھی سنگیت کے ساتھ میوزک کے ساتھ راس کرتے تھے, جس کے کارن تن من دونوں درست تھا, ہم سب خوش تھے. لیکن ہماری خوشی جب غائب ہو گئی, جب خوش ہوتا ہے کوئی تو ہی تو ناچتا ہے, جب خوشی غائب ہو گئی تو ناچیں گے کیسے, بھول گئے سب. تو اس لیے بابا کہتے دیکھو بچے ایک جانور بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے, سنگیت بجتا ہے تو پشو پنچھی بھی ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے دیکھو کریٹ دی لائٹ آف یور لائف. ایک کمرہ ایک گھنٹے سے اندھیرا ہے, ایک دن سے اندھیرا ہے, ایک مہینے سے اندھیرا ہے, ایک سال سے اندھیرا ہے کہ ہزاروں سال سے بھی اندھیرا ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. جیسے ہی آپ ایک موم بتی لے آؤ گے اندھکار ایسا ہی بھاگ جاتا ہے جیسے کہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. تو اسی پرکار کتنے دنوں سے ہم اجانتا کے گھر میں تھے, گھر میں بھول جائیے, ابھی بھی ہم جاگے کہتے ہیں رات کا بھولا ہوا بھٹکا ہوا بچہ اگر سویرا بھی پہنچتا ہے پہنچا نا. تو اسی پرکار دی مومنٹ یو ڈیسائڈ ٹو بریک فری نتھنگ ول اسٹاپ یو. جس دن آپ اپنی اجانتا کو دور کر کے جیون میں کچھ پریورتن لانا چاہتے ہو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا ہے. تو روز چلنا ضروری ہے, روز اگر آدھا گھنٹہ ڈیلی چلیں گے تو ایک دم سوستھ رہیں گے. اور تھوڑا سا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے سنگیت کے ساتھ, بابا کے گیت کے ساتھ. میں اس لیے جو آپ کو سروس کا فوٹو دکھا, ہزاروں لوگ آ کے, ہزاروں لوگ آ کے اتنا سندر ایکسرسائز کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہو. بابا کے گیت بجتا ہے, بابا کے گیت لوگ کہتے ہیں یہ باڈی کانشسنس ہے. کیا باڈی کانشسنس ہے, کیا باڈی کانشسنس ہے؟ بابا کے گیت کے ساتھ, بابا کے سمے بھی ہماری دادیاں راس کرتے تھے, پوچھ لینا. جگدیش بھائی پہلی بار آئے تھے تو ہماری دیدی تھی, دیدی کہتی کہ یہ پہلا آیا ہے اس کو نہیں اندر الاؤ نہیں کرو. لیکن جگدیش بھائی نے کہا میں بھاگوت پڑھا ہوں مجھے سب پتا ہے آپ چنتا نہیں کیجیے گا. کیونکہ بابا کے ساتھ سب دادیاں ہمارے خوب راس کرتے تھے پہلے, تو ہم بابا کی گیتوں کے ساتھ تھوڑا سا جھومیں, تھوڑا سا خوشیوں میں اپنے سارے شریر کو یہ کریں. آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھیا ایکسرسائز ہے ڈانس کرنا. کوئی آدھا گھنٹہ دوڑتا ہے, کوئی 10 منٹ ڈانس کرتا ہے, برابر ہے. میرے پاس بہت سارے ریکارڈیڈ ماتائیں, بوڑھی بوڑھی ماتائیں کہتے ہیں ہم تو ایک دم ٹھیک ہو گئے, ہماری ساری بیماری ٹھیک ہو گئی, سب ٹھیک ہو گیا, سر درد ٹھیک ہو گیا, کمر درد ٹھیک ہو گیا. تو بابا کی گیت کے ساتھ جھومو تھوڑا, دیکھو ایک دم سدا کے لیے خوش رہو گے. تو دیکھو بابا کہتے ہیں ایور ہیلدی لائف از یور گاڈ فادرلی برتھ رائٹ. سو تھینک یو ویری مچ. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے سنگیت کے ساتھ تھوڑا سا اگر ہم ایکسرسائز ڈیلی کرتے ہیں تو بہت سندر رہے گا. لیکن یہاں میڈیٹیشن کی بات آپ کو نہیں سنایا کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے. میڈیٹیشن کی بات اور کبھی ایک دن پھر سناؤں گا کہ واسطو میں میڈیٹیشن کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہیلدی رہیں گے. ایسے میڈیٹیشن تو کر رہے ہیں لیکن کون سا میڈیٹیشن کریں تاکہ شریر بھی سوستھ رہے. तो अभी सभी क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज। वास्तव में मुझे सिल्वेन जी बताई थी कि एक्सरसाइज थोड़ा सा 5 मिनट बताना, परंतु रात को एक्सरसाइज करना, वास्तव में अभी खाना खाए हैं, एक्सरसाइज करने का ये टाइम नहीं है, लेकिन कभी मैं एक वीडियो दिखा दूंगा नेक्स्ट कभी। अभी 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर ओम शांति। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया दवाई कहो, सबसे बढ़िया खुराक कहो, क्या है? खुशी। और खुशी कब आती है, कब आती है? जब बहुत सुंदर संगीत सुनते हैं, बहुत सुंदर गीत सुनते हैं, है ना? नहीं, इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे अशरीरी बनना चाहते हो तो 4 बातें याद करो, क्या क्या? गीत, मीत, प्रीत, रीत। तो सबसे पहले बाबा ने गीत कहा है। अगर बहुत सुंदर गीत कोई गाता है तो देखना एकदम रोमांच हो जाता है, मन एकदम खुश हो जाता है, उसके अंदर से स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, उसका मन भी दुरुस्त तो तन भी दुरुस्त, दोनों एकदम दुरुस्त हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत संगीत में बजाता हूँ, एक सुंदर गीत बजाऊंगा, वो गीत आप भी गुनगुनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? नहीं गाएंगे सभी? बाबा के गीत है, सभी को गाना पड़ेगा। गाएंगे सभी? सभी गाएंगे? जो गाएंगे हाथ उठाइए। थैंक यू। बाबा का गीत है, सबको गाना है इसके साथ साथ, ठीक है? ये डुएट गीत है, तो पहला स्टांजा सुनना, फिर सेकंड टाइम सभी जैसे साथ में गाते हैं ना ऐसे ही गाना, और यही गीत गुनगुनाते हुए रात को बाबा के गोदी में जाके सो जाना, देखना सवेरे उठते ही कितना मन गदगद हो जाएगा। तो बाबा के गीत गाते रहो, झूमो खुशियों में। मैं देखा हूँ हमारी सील दादी और रामी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थे शरीर छोड़ने से एक दिन पहले, मैं देखा हमारी रामी दादी तो ऐसे डांस करती थी जैसे छोटी बच्ची जैसी, बिल्कुल कल शरीर छोड़ने वाली है, लेकिन ऐसा डांस करती थी, बात मत पूछो। तो बाबा के संगीत के साथ खुशियों में झूमेंगे, गीत गुनगुनाते रहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे, यही तो योग है, यही तो जीवन है। खाली बैठ के लाल लाइट में आंख ऐसा करके योग करना, वो खाली योग नहीं है। बाबा ने हमें कर्मयोगी बनाया है, चलता फिरता योगी बनाया है, उड़ता योगी बनाया है। तो अभी एक सुंदर गीत बजाता हूँ, गीत के साथ मेरे सामने यहाँ इसके साथ इसमें पिन है, लगाएंगे ये गीत इधर है, हाँ हाँ चलेगा, हाँ एक मिनट इसमें ही यहाँ डाल दीजिए, हाँ वही प्ले करो, हाँ प्ले करो, एक मिनट
नौ बजे हो गया,
रुकिए रुकिए
देख करो प्ले उसको।
अभी एक मिनट रुकिए,
इसमें भी एक स्वास्थ्य का गाना ढूंढा
था, नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं जो बजाता हूँ ये बाबा की गीत है, हाँ अंकर सब बाबा को याद करते हुए गीत के साथ खुद भी गाना है। आ मिले बाबा हमें मिल गई मंदिर,
मन मधुबन में गूंज रही है खुशियों की सरगम,
मन मधुबन में गूंज रही है खुशियों की सरगम, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंदिर, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंदिर। आए मिलन मनाने के दिन हमसे मिलन मनाए, हम हैं बाबा के संग मीठी मुरली सुनाए,
मुरली हमें सुख देती जीवन में हरदम,
मुरली हमें सुख देती जीवन में हरदम, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल। दौलत पाई मंजिल खुद ही चल करके पास हमारे आई,
बाबा के संग हमने तो ऐसी दौलत पाई मंजिल खुद ही चल करके पास हमारे आई।
आनंद मिला इलाही इजहार कैसे करे हम,
आनंद मिला इलाही कैसे इजहार करे हम, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल।
झूम झूम कर गाए एक तुझे पाने से, बाहरों के दिन आए द्वार तेरे आने से।
आकर बाबा प्यार हमें देते हैं परम,
आकर बाबा प्यार हमें देते हैं परम, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल, आ मिले बाबा हमें मिल गई मंजिल।
ओम शांति।